अध्याय 15 नीति शास्त्र नैतिक शिक्षा धार्मिक शिक्षा नीति शास्त्र। नीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसके द्वारा नैतिकता से संबंधित बातों की शिक्षा दी जाती है। नीति शास्त्र श्रेय कर्तव्य या परमार्थ का सुव्यवस्थित अध्ययन करता है। चरित्र निर्माण नैतिक जीवन है और चरित्र विवेचन नीति शास्त्र है। नैतिक नियम अनिवार्य तथा बाध्यताकारक है। वह हमसे तथा अन्य सभी व्यक्तियों से अनिवार्य रूप से अपना पालन करवाता है। यदि वह हमारा आवेग मात्र या विचार मात्र या आचरण मात्र है तो उसमें यह शक्ति नहीं रह जाती, वह केवल वैयक्तिक सुविधा रह जाता है। नैतिकता के बिना जीवन का मूल्य नहीं। नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा सभी शिक्षा का केंद्र है। प्राचीन काल से ही बच्चों के नैतिक विकास को शिक्षा का अभिन्न अंग माना जाता रहा है। इसके अभाव में शिक्षा निरर्थक है। वह शिक्षा जो नैतिकता का पाठ न पढ़ावे उससे जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति असंभव है। शिक्षा का अर्थ है सर्वांगीण विकास करना। वह व्यक्ति जो भौतिक वातावरण में जीवन व्यतीत करता है उसके अच्छे सामाजिक जीवन के लिए भौतिक वातावरण की सहायता चाहिए, अतः उसमें संज्ञानात्मक योग्यताएं तथा कौशल का होना आवश्यक है। संज्ञानात्मक और कौशल का विकास शिक्षा द्वारा किया जाता है। वातावरण का लाभ वह तभी उठा सकता है जब वह उसका संज्ञानात्मक और कौशल का विकास हो या हो गया हो। यदि नैतिक विकास नहीं किया गया तो ये दोनों विकास खतरनाक हो सकते हैं। यदि नैतिक विकास नहीं किया गया तो आदमी का शोषण करेगा, मनुष्य को पशु समझेगा और निर्जीव वस्तुओं की भांति उसके साथ व्यवहार करेगा। ऐसी दशा में आदमी और जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। नैतिक शिक्षा के अभाव में पढ़ा लिखा आदमी भी पशु कहा जाएगा। नैतिकता से रहित स्थिति विनाश करेगी। ऐसे व्यक्ति की आत्मा कभी भी विजयी नहीं हो सकती। मानव व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए उचित वातावरण आवश्यक है। नैतिकता व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है। प्रवृत्तियां दो प्रकार की होती है, विध्वंसात्मक और रचनात्मक। पहले प्रकार की प्रवृत्तियां वे हैं जिनका उद्देश्य स्वपरीक्षण होता है। आक्रात्मकता, क्रोध, ईर्ष्या, भय, काम वासना आदि। दूसरे प्रकार की प्रवृत्तियां सहज प्रवृत्तियां हैं। सहज प्रवृत्तियां या बल वे हैं जो समाज के परीक्षण की ओर होती हैं। प्यार, स्नेह, अनुरक्ति, सहानुभूति, करुणा, परानुभूति, फ्रायड की शब्दावली में पहली प्रकार की प्रवृत्तियां इससे काम तत्व से संबंधित हैं तथा उपरोक्त अथवा पिछली प्रकार की प्रवृत्तियां पराहम से संबंधित होती हैं। तथा उपरोक्त पिछली प्रकार की प्रवृत्तियां परा अहम से संबंधित होती हैं। जब अहम इन दोनों का संतुलन करता है, व्यक्ति की पूरी परीक्षा में व्यक्तित्व के तीनों प्रकार के गुणों जैसे बुद्धि, सामाजिक पक्ष और वैयक्तिक पक्ष का संतुलन करता है का आवश्यक है। नैतिक शिक्षा मनुष्य को सामाजिक पक्ष से जुड़ी है। सामाजिक संदर्भ में ही नैतिक शिक्षा का महत्व है। नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा। आइए देखा जाए कि नैतिकता से धर्म का कोई संबंध है अथवा नहीं। बहुत पहले से ही नैतिकता धर्म से घनिष्ठ रूप से संबंधित रही है। नैतिक शिक्षा विषय कोई प्रश्न सामने आता है अथवा कोई समस्या सामने आने पर उसके समाधान के लिए धर्म गुरुओं के पास जाना जाता है होता है। कोई कार्य नैतिक है अथवा अनैतिक, उचित है अथवा अनुचित, इसका फैसला धर्म के गुरु लोग धार्मिक पुस्तकों के आधार पर निर्णय देते हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म जैसे धर्म और इनके गुरु भारत और में अपने धर्म के अनुसार नैतिकता और अनैतिकता का फैसला लेते हैं। भारत में ही ऐसी नहीं, विदेशों में भी ईसाई धर्मों के गुरुजन अच्छे बुरे नैतिक अनैतिक कार्यों का फैसला करते हैं। क्या नैतिकता धर्म से शक्ति प्राप्त करती है या नैतिकता धर्म से अलग स्वतंत्र है? नैतिकता को धर्म से संबंधित होने के उदाहरण हमको धार्मिक स्कूलों में देखने को मिलते हैं। ऐसे धार्मिक स्कूल जो किसी संप्रदाय की देखरेख में चलते हैं, ऐसे स्कूलों में अपने अपने संप्रदाय के अनुसार दैनिक प्रार्थना होती है और खाली घंटे में उस संप्रदाय से संबंधित धार्मिक शिक्षा दी जाती है। वास्तव में धर्म शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक है और संप्रदाय तथा मतों से बहुत ऊंचा है। वास्तव में धर्म शब्द का अर्थ तो बड़ा व्यापक है और संप्रदाय तथा मतों से बहुत ऊंचा है। धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है। पूर्व मीमांसा के अनुसार धर्म वह है जो प्रेरणा दे, सच तो यह है कि धर्म मानवीय होगा तो यह धार्मिक मतों और इनकी शिक्षाओं से बहुत ऊपर होगा। यदि धर्म को हम संकीर्ण अथवा संकुचित रूप में लेते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कठिनाइयां सामने आती हैं। भारत धर्म निरपेक्ष देश है। जब धर्म का अर्थ और ऊंचे तथा व्यापक रूप ले लें तो धर्म निरपेक्ष के स्थान पर मत निरपेक्ष होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, ये सभी मत धर्म नहीं। यदि हम धर्म का पालन करें तो अपने को धार्मिक कहें तो हम लड़े सभी नहीं, पर हम सबका एक उद्देश्य हो, हम सभी को एक हो जाएं। अतः नाहक ही हम अलग अलग मतों में होकर भी धार्मिक कहलाने का दावा करते हैं। अतः यदि हम इसे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं तो यहाँ बच्चों को नैतिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि कोई सद्गुण किसी मत के अनुसार सही होगा तो उसके अनुसार गलत। कोई किसी बात को सही मानता है तो कोई उसे गलत मानता है। माता पिता अपने बच्चों को संप्रदाय वाले विद्यालयों में भेजने से डरते हैं कि उनका बच्चा कहीं किसी अन्य संप्रदाय से प्रभावित न हो जाए। भारत में नैतिक शिक्षा की विकट समस्या। भारत में जनसंघ, स्वयं सेवक संघ आदि की संस्थाएं जो शिशु मंदिर आदि नामों से जाने जाते हैं, इस्लामिया स्कूल हैं जो इस्लामों द्वारा चलाए जाते हैं, ईसाइयों के भी स्कूल हैं। हर जगह अपने अपने मतों के अनुसार प्रार्थनाएं होती हैं। अलग अलग मतों के अनुसार नैतिक शिक्षा भी दी जाती है। इनकी नैतिकता सिद्धांत में कुछ है और व्यवहार में कुछ अलग। यहाँ तो नैतिक शिक्षा देने के लिए सद्गुणों की नई सूची बनानी होगी जिसे सभी मतों वाले स्वीकार करें और व्यवहार में ला सकें। यदि सभी अपने मत से शिक्षा देंगे तो यहाँ के समाज में एकता कैसे कायम रह सकती है। धर्म व्यक्तिगत मामला है और विद्यालय सामाजिक। समाज में विद्यालयों की स्थापना निम्नांकित उद्देश्यों को सामने रखकर की जाती है। नागरिकों का बौद्धिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, कौशलों का विकास करना, अभिवृत्तियों का विकास करना, नैतिक विकास। और नैतिक विकास तो संपूर्ण विकास का प्राणधार ही है। अतः नैतिकता की शिक्षा और धार्मिक शिक्षा का मेल अनिवार्य न होकर संयोग की बात है। हम यदि किसी धर्म के बिना रह सकते हैं लेकिन किन्हीं नैतिक मूल्यों के बिना रहना असंभव है। वे मूल्य ही हैं जो हमारे व्यवहारों और मानवीयता को शिक्षा देते हैं। ऐसे में नैतिकता का संयोजन धर्म से कैसे कर सकते हैं। भारत जैसे देश के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए भारतीय आदर्शों को लेकर चलने वाले विद्यालयों की आवश्यकता है। ऐसे विद्यालय जो आरंभिक अवस्था में बच्चों में भारतीय संस्कारों से संस्कृत कर सके। ऐसे विद्यालय देश में कम ही हैं। गुरुकुलों की पद्धति पर चलने वाले शांति निकेतन, गाजा, नागाजी, एमबी, मवपावी, मालदेवपुर, बलिया और कुछ सीमा तक सरस्वती शिशु मंदिरों में भारतीय जीवन मूल्यों के हस्तांतरण में विशेष योग दे रहे हैं। इसी कारण आज के परिवेश को देखते हुए सभी लोग धर्म निरपेक्ष नैतिकता की बात करते हैं। नैतिकता के लिए यही उपागम ठीक हो सकता है। धर्म और नैतिकता के बीच कोई तार्किक मेल नहीं है। यदि कोई मेल है तो वह केवल आकस्मिक है। यदि हम धर्म और नैतिकता में मेल करना चाहते हैं तो शिक्षा के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। यदि नैतिकता धर्म के आधार पर बनाई गई है तो निश्चित ही वह सत्तावादी होगी। देवत्व द्वारा ही ऐसी नैतिकता की प्रशंसा की जा सकती है, अन्यथा नहीं। यदि हम देवत्व के साथ रखने वाली नैतिकता को स्वीकार न करें तो इसे अन्य कारणों से स्वीकार करें तो ऐसी नैतिकता धार्मिक नहीं कही जा सकती। उदाहरण ले कि यदि किसी अन्य कारण से यह मानो कि हमने जो वचन दिया है उसे निभाऊंगा तो यह धार्मिक नैतिकता नहीं है। और यदि किसी नैतिक रास्ते पर इसलिए चलूं कि वह वेदों का आदेश है या किसी शंकराचार्य की आज्ञा है तो कहा जाएगा कि यह किसी धार्मिक सत्ता का आदेश है। मैं इस आदेश का पालन इसलिए करता हूं कि धार्मिक सत्ता में मेरा विश्वास है, उस धर्म गुरु में मेरा विश्वास है, मेरा गुरु जैसी आशा मुझसे करता है मैं वैसा करता हूं। यह निश्चित है कि कोई भी नैतिकता जो धर्म से निकलती है और धर्म पर आधारित है वह निश्चित ही सत्तावादी होगी। नैतिकता को धर्म से जोड़ना ठीक नहीं। व्यक्ति को अपने चिंतन के अनुसार नैतिकता चुनना चाहिए। धर्म पर आधारित नैतिकता के में चुनाव का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि धर्म नैतिकता के चुनाव की कोई छूट नहीं देता। अतः ऐसी नैतिकता स्वीकार नहीं की जा सकती। नैतिक विवेक के लिए कोई स्थान नहीं। नैतिक विवेक ऐसा होना चाहिए जो बदलती सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अपने को समंजित कर सके, नैतिक समस्याओं को सुलझा सके, अपने सिद्धांतों में आवश्यकता के अनुसार सुधार कर सके। धर्म नैतिक निर्णयों के लिए कोई ठोस आधार नहीं देता। यह भयानक समस्या आज परिवार नियोजन की है। आबादी बढ़ रही है। ऐसी दशा में यदि आबादी बढ़ने पर रोक नहीं लगाई गई तो पूरे देश भूख से मर जाएगा। आबादी को रोकने के लिए ये तरीके सामने आए हैं, गर्भ निरोध विधियों का प्रयोग, नसबंदी, गर्भपात। आबादी कम करने के इन विधियों पर धर्म दुविधा में पड़ जाता है। ऐसा करने का आदेश नहीं देता। गर्भपात दंडनीय अपराध करार दिया गया है। जनसंख्या की अधिक वृद्धि हो जाने पर लोग जरूरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसा होने पर कोई धर्म और कोई नैतिकता कुछ नहीं कर पाएगी। अपने जीवन को बचाने के लिए आदमी छोटा से छोटा काम करने, अनैतिक जघन्य कार्य करने को तैयार हो जाएगा। एक प्रश्न विवेक पर छोड़ना चाहिए, धर्म पर नहीं। डाउनी और कैली कहते हैं कि असली नैतिकता धर्म से स्वतंत्र होगी। कांट कहते हैं ईश्वर के प्रति विश्वास व्यक्ति की नैतिकता चेतना का फल है, न कि नैतिकता का आधार ईश्वर के प्रति आस्था। अतः नैतिकता विषयक सभी प्रश्नों का हल अथवा छानबीन बिना धर्म के हटकर स्वतंत्र होकर करनी चाहिए। ऐसा आधार ढूंढा जाना चाहिए जिससे हर कोई सहमत हो। नैतिक शिक्षा क्या है? सुकरात कहते हैं अच्छाई का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति अच्छा मनुष्य है। प्लेटो कहते हैं शिक्षा का कार्य बच्चों में उस ज्ञान की प्रतीति कराना है जिससे विवेक और सद्गुण जागृत हो। ज्ञान का उत्कर्ष सुंदरता, सत्यता और शिवत्व की उच्चतम रूप की प्राप्ति है। रोमन और यहूदी परंपराओं के अनुसार सद्गुणों और नैतिक मूल्यों का विकास परम आवश्यक है। ऐसा विकास जिसमें हो जाता है वह सत्यनिष्ठ व्यक्ति कहा जाता है। यहूदी और रोमन परंपराओं के विलयन के बाद जिस ईसाई धर्म का विकास हुआ उसने चरित्र प्रशिक्षण को शिक्षा का आवश्यक कार्य माना। कैमिनियस कहता है पाठ्यक्रम में वे सभी विषय हों जो व्यक्ति को बुद्धिमान सद्गुणी बना सके। लॉन्ग के अनुसार सद्गुण ही शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाना चाहिए। रूसो, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट प्रोवेल सभी ने मानवता के व्यवहार को शिक्षा में उच्च स्थान दिया है। हर्बर्ट ने शिक्षा के पूरे क्षेत्र को नैतिकता में बांध दिया है। नैतिक शिक्षा की नई विचारधारा, धर्म निरपेक्षता, नैतिकता। आज नैतिकता की एक नई विचारधारा सामने आई है, इसे धर्म निरपेक्ष नैतिकता कहते हैं। नैतिकता का संयोजन धर्म से नहीं करना चाहिए। धर्म को अस्वीकार करने की विचारधारा विकसित हो रही है। नैतिकता ने अगर धर्म से रिश्ता जोड़ा तो उसे भी अस्वीकार कर दिया जाएगा। पहले नैतिक अवबोधन वस्तुगत दृष्टि से वैध समझा जाता था। इसका परिणाम हुआ कि नैतिकता को एक प्रकार का चरित्र परीक्षण समझा जाने लगा। नैतिक रूप में शिक्षित व्यक्ति वह है जिसने कुछ विशेष प्रकार की नैतिक मूल्यों को जान लिया है। वह बिना किसी परिस्थितियों का ख्याल किए उन मूल्यों का आचरण करता है। अतः नैतिक शिक्षा समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं और अपेक्षाओं, जिसमें व्यक्ति को एक सक्रिय तथा स्वतंत्र प्राणी के रूप में माना गया हो। नैतिक शिक्षा व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता की मांग है तथा दूसरों की स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता के प्रति सम्मान। हमें सामाजिक प्राणी होने के नाते नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। नैतिक अनुदेशन और नैतिक शिक्षा। आर.एस. पीटर्स के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की विकासशील स्वायत्तता से संबद्ध है। अन्य प्रक्रियाओं का इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं होता। जब हम किसी को प्रशिक्षण देना चाहते हैं तो हमारे मन में व्यक्ति की स्वायत्तता संबंधी कोई विचार नहीं होता। साइकिल चलाने के प्रशिक्षण के में एक बार जब अनुकूलन हो जाता है तो साइकिल चलाने के लिए प्रयास नहीं करना होता। एक व्यक्ति जिसका अनुकूलन या सिद्धांत रोपण कर दिया जाता है वह उस क्षेत्र में चिंतन करना बंद कर देता है। व्यक्तियों को जब किसी सामाजिक या राजनीतिक प्रणाली के अनुसार सिद्धांतों रोपण कर दिया जाता है तो वह उस प्रणाली को एकदम से स्वीकार कर लेता है। प्रयास संकल्पित हो जाता है। शिक्षा का अभिप्राय शिक्षार्थियों में अपनी धारणाएं बनाने की योग्यता का विकास ही नहीं है अपितु उसमें उन धारणाओं की गुणवत्ता को संशोधित करने की योग्यता भी शामिल है। व्यक्तियों में अधिकाधिक ज्ञान और विवेक हासिल करना चाहिए। जिससे वे नैतिक चुनाव के योग्य हो जाएं। शिक्षक का काम है कि वह बच्चों को सिखाए कि वे नैतिक विषयों पर कैसे सोचें, यह नहीं कि क्या सोचें। इसके लिए शिक्षकों को यह कार्य करने होंगे, वाद विवाद को प्रोत्साहित करें, अपनी सत्ता को दूर रखें, अपने विचार उन पर न ला दें, वाद विवाद के महत्व को बढ़ावा दें, बच्चे के अंदर नैतिक स्वायत्तता विकसित करें। कोहल वर्ग का स्वयं अनुमोदित नैतिक सिद्धांत, हमें उस रीति पर ध्यान देना चाहिए जिसके अनुसार वे अपने नैतिक संस्थाओं को धारण करते हैं। शिक्षा पर जो को बातें दर्शाई गई हैं, उनका निष्कर्ष यह रहा है कि छात्रों में नैतिकता में शिक्षित करने के लिए अध्यापक को निश्चित होना चाहिए कि विद्यार्थी नैतिक आचरण के प्रति सार्थक और उचित अवृत्ति का विकास कर रहे हैं। एक स्वायत्त नैतिक चिंतन केवल बौद्धिक स्तर पर ही नहीं किया जा सकता। नैतिक कर्म किसे कहते हैं? इसका केंद्र बिंदु अभिप्रेतता है। किसी कार्य को नैतिक या अनैतिक तब तक नहीं कह सकते जब तक कि हम यह जान लें कि उसने ऐसा अपने स्वतंत्र संकल्प व्यापार द्वारा किया है, कर्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी हो। किसी व्यक्ति को कोई कार्य दबाव या मजबूती में करना पड़ रहा है, उसे यदि स्वतंत्र अपनी इच्छा पर छोड़ दिया जाता तो वह इसे न करता, ऐसी दशा में उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। क्या कर्ता ने उस कर्म को इसलिए किया वह इसे उचित समझता था, अथवा उसने इसलिए किया कि उससे लाभ था? नैतिक निर्णय करते समय हम क्या देखें? नैतिक निर्णय करते समय कर्म नहीं देखना चाहिए, बल्कि जिसके लिए किया गया यह देखना चाहिए। कांट ने कहा, इस विश्व में अथवा इससे बाहर कोई चीज ऐसी नहीं सोची जा सकती जिसे निरपेक्ष रूप में अच्छा कहा जा सके, सिवाय शुभ अभिप्राय के। शुभ अभिप्राय से किया गया कर्म अच्छा होगा, चाहे इसके परिणाम कुछ भी हो। हर परिस्थिति में इसे दोष रहित कहा जाएगा। किसी भी कर्म के लिए निर्णय देते समय इन्हीं दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। न्यायालयों में निर्णय देने के पहले इन्हीं दो नियमों का पालन होता है। क्या कार्य जानबूझकर किया गया? क्या कार्य करने में व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र था? यदि कार्य दबाव में हुआ तो व्यक्ति उत्तरदायी नहीं। अभिप्राय शुभ होने पर परिणाम की अशुभता के लिए व्यक्ति दोषी नहीं। यह कांट द्वारा दिया गया उदाहरण विचारणीय है। कर्तव्य के लिए किया गया कार्य, कर्तव्य के अनुसार किया गया कार्य, दोनों में प्रथम प्रकार के कर्म ही कर्तव्य के लिए किए गए हैं, इसलिए इन्हें नैतिक कर्म की संज्ञा दी जा सकती है। नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति के लक्षण। नैतिक निर्णय लेने की क्षमता। एक व्यक्ति में स्वायत्त निर्णय लेने की क्षमता हो, अर्थात जो नैतिक निर्णय ले सके। दो, उन कारणों पर ध्यान देकर नैतिक निर्णय लेने वाला हो जो उस निश्चित निर्धारण के लिए जिम्मेदार हो। तीन, नैतिक रूप में शिक्षित व्यक्ति के पास समस्या से संबंधित पर्याप्त तथ्यात्मक ज्ञान होना चाहिए। चार, उचित नैतिक निर्णय लेने में सक्षम होने के लिए नैतिक निरपेक्ष तथ्यों से भली प्रकार परिचित होना चाहिए। पांच, उचित उपयुक्त नैतिक निर्णय कर सकने के लिए व्यक्ति में कुछ कौशलों सामाजिक कौशल का होना आवश्यक है। नैतिक निर्णय केवल बौद्धिक या सैद्धांतिक रूप में नहीं किया जा सकता। छह, एक नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों के मनोभावों का ज्ञान तथा अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। हमें भावात्मक स्तर पर काम करना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि हम दूसरों के मनोभावों को गहराई के साथ समझते हैं। सात, दूसरे के भावों के महत्व को समझना चाहिए, उनके भावों को स्वीकार करना चाहिए। आठ, दूसरों के हितों अधिकारों मनोभावों को बौद्धिक स्तर पर नहीं लेकर भावात्मक स्तर पर लेना चाहिए। नौ, हमारा नैतिक व्यवहार हमारे अपने मनोभावों से प्रभावित होता है। कोई भी नैतिक निर्णय केवल अंतर्दृष्टि के आधार पर नहीं लिया जा सकता। अरस्तु का कहना है कि केवल बौद्धिक स्तर पर नैतिक निर्णय कर लेना पर्याप्त नहीं होता। अरस्तु का कहना है, सेंट पॉल्स ने भी कहा था, बुराई जो मुझे नहीं करनी चाहिए मैं कर बैठता हूँ और अच्छाई जो मुझे करनी चाहिए नहीं कर पाता। दुर्योधन ने भी कहा था, धर्म क्या है यह मैं जानता हूँ परंतु धर्म पर चलने की प्रवृत्ति मुझमें नहीं है। अरस्तु के अनुसार नैतिक शिक्षा में औचित्य नियम सीखना ही सम्मिलित नहीं है, अपितु इसमें एक प्रकार के चरित्र निर्माण का प्रशिक्षण भी सम्मिलित है, जिसके अनुसार बच्चे एक बार समझने के पश्चात इस नियम का अनुसरण करें। व्यक्ति के विकास में भावनाओं की भूमिका है, नैतिकता के विकास में भावनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः नैतिकता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अनिवार्य समझा जाना चाहिए। कंप्यूटर नैतिकता पूर्ण व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भावात्मक उत्तर देने की योग्यता का अभाव है। वास्तव में यह भावात्मक उत्तर है जो मानवता को दर्शाता है और इस योग्य बनाता है कि हम नैतिक प्राणी के रूप में प्यार कर सकें।